कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायक कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्ण गुरवे गौरचंद्राय तदवक्ताय
बाहे एखने चोखे लागछे एक आदमी पूर्ण रूप से स्वस्थ है, बहुत धनाढ्य है, रहने के लिए अच्छे घर हैं, स्त्री पतिव्रता और आज्ञापालक है, योग्य पुत्र हैं, ऐसे व्यक्ति को भगवत भजन करने की क्या आवश्यकता है। वो सब प्रकार से सुखी अपने को समझता है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान को भजन करने की जरूरत क्या है, इस चीज को हम लोगों को समझना चाहिए। विशेष करके श्रीमद् भागवत में ये बतलाया गया कि जब कलयुग आने वाला था आज से 5000 वर्ष पहले, तो भारतवर्ष के सब ऋषि महर्षि लोग नैमिषारण्य में एकत्रित हुए और इसी विषय पर विचार होने लगा। भयानक कलयुग आ रहा है जिसमें आयु बहुत छोटी और सब प्रकार से मनुष्य मंदभाग्य होंगे, इच्छा बहुत कुछ होगी और इच्छा के विपरीत लोग सभी दुखी रहेंगे। मंदभाग्य और मंद से मंदभाग्य होगा, जीवन में कुछ सुख पाने के लिए काम करेंगे किंतु होगा दुखी। इसलिए हे सुत गोस्वामी, आप समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले हैं, भूत भविष्यत वर्तमान को भी जानने वाले हैं, हम लोग को क्या करना चाहिए, यह प्रश्न पूछा। सचमुच हम देखते हैं कि मेडिकल साइंस से लेकर नाना प्रकार के विज्ञान बहुत उन्नत हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन, आवागमन और भी कम्युनिकेशन, एक मिनट में यहां से अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत कर लो और पृथ्वी का चक्कर लगा लो, कहीं भी रहो कहीं से तुम बातचीत कर सकते हो, इतनी सुविधाएं हैं। एक आदमी मर रहा है दूसरे की आंख लगा देंगे, किचन घर की भी खूब उन्नति हुई है, रसोई घर की, किंतु कोई भी सुखी नहीं। ऐसा कौन मनुष्य है जो सारे संसार के वैज्ञानिक और डॉक्टर मिलकर के भी किसी के बुढ़ापा को एक दिन में रोकते, बुढ़ापा के दुख को भी कोई रोक सकता, जन्म और मरण के कष्टों को कौन दूर कर सकता, ऐसा कौन व्यक्ति है जो मरेगा नहीं। तो आखिर क्या कारण है कि हम लोग सुखी नहीं हैं? क्योंकि हमने आत्मा के लिए, मैं के लिए कुछ नहीं किया। आत्मा का अर्थ होता है मैं, यदि शरीर से मैं निकल गया, आत्मा निकल गई, एक दिन में उसका शरीर सड़ने गलने लग जाएगा, एक दिन भी बातचीत नहीं करेगा, शरीर है किंतु करेगा नहीं। समस्त बुराइयों की जड़ ये संसार में आसक्ति है, केवल शरीर ही नहीं, इस शरीर से जहां जिसका संबंध है उसमें आसक्ति ही ये संसार में जेल खाना में आने का प्रधान कारण है। हमने भगवान को छोड़ दिया जो सृष्टि स्थिति प्रलय के करता है, अपना पृथक रूप से कुछ सुख चाहा, हम उसे भूल गए, उसके बिना हम सुखी नहीं रह सकते, इसलिए माया ने हमें फेंक दिया इस कारागार में, संसार रूपी कारागार। ये कारागार है, इसमें जरण मरण त्रिताप इत्यादि के दुख अवश्य ही होंगे, जैसा भी कोई हो। रावण सोने की लंका, उसके नौकर चाकरों भी महल राजभवन इत्यादि मणियों मुक्ताओं से और सोने से बना हुआ था। आयु कितनी थी? 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती और स्त्रियों की कोई गिनती नहीं थी, मंदोदरी से लेकर के कितनी। तो अभी पेट नहीं भरा तो सीता जी को चुरा लाया और अंत में ऐसा ध्वंस हुआ कि सभी लोग मारे गए, कोई सुखी नहीं रहा। और भी उदाहरण के लिए देख सकते हैं, हिरण्यकश्यपु ना आकाश में मरेगा, ना पाताल में मरेगा, ना घर में मरेगा, ना घर के बाहर मरेगा, किसी देवता गंधर्व मनुष्य से उसकी मृत्यु नहीं होगी, किसी ब्रह्मा के बनाए हुए प्राणियों से भी मृत्यु नहीं होगी, वज्र जैसा शरीर उसका, किसी महीने में भी नहीं मरेंगे, किसी दिन में नहीं, रात में नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं। तभी उसको मरते हुए कितना समय लगा? एक क्षण भी तो समय नहीं लगा, सुखी रहा। अपने छोटे से बालक, 5 वर्षीय बालक से डर गया, यही हमारे मृत्यु का कारण न हो जाए। इसलिए जगत में भगवान ने मनुष्य शरीर दया करके दिया है, जाओ इसकी अनुभूति करो कि मनुष्य शरीर से ही साधु संघ हो सकता है। आजकल साधु संघ का मतलब जो अपने ही माया में डूबे हुए हैं, लड़ते झगड़ते और तरह तरह के माया में फंसे हुए, वो साधु नहीं। सचमुच में जिसका हृदय साधु हो गया है, निर्मल हो गया है, संसारिक आसक्ति कामना वासना नहीं है, राजनीति इत्यादि से उनका कोई भी संपर्क नहीं है, बड़े दयालु होते हैं, शास्त्रों का सार सब समझने वाले होते हैं, भगवान की कुछ ही अनुभूति होगी, ऐसे व्यक्ति हमारा कुछ कल्याण कर सकते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के संग के लिए साधु कहा गया, जो अपने माया में पड़ा हुआ है, काम और आसक्ति, भोग में, धन में, सब में आसक्ति भरी पड़ी हुई है, वो क्या दूसरों की का कल्याण कर सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज जी का उपाख्यान बहुत ही सुंदर है, मतिर्न कृष्णे परतो सतो वा, कृष्ण में जिसकी मति नहीं है, मतिर्न कृष्णे परतः सतो वा, दूसरों के द्वारा जो कि असद व्यक्ति हैं, असद गुरु हैं, उनके द्वारा भी नहीं होगा, अपने भी नहीं होगा। अपने लाख बुद्धि करो, भगवान में चित्त नहीं जाएगा। और जो स्वयं जिसका मति कृष्ण में नहीं है, केवल साधु ऊपर का वेश है, उनके द्वारा भी संघ से कुछ नहीं होगा, वो तो महत पजो भी से कम महत व्यक्तियों के का संग हो, उसकी वाणी से स्नान कर लिया हो कोई, उसके संग से भगवान के चरण में मति होगी। और असदगुरु चर्बित चरबना नाम, चबाए हुए को फिर से चबाते हैं, मतलब क्या, हमारे दादे परदादों ने जो भोग किया अंत में बिलबिलाते हुए मर गए बड़े पछताते हुए, हम उसी को भोग रहे हैं, उसे दुखी हैं। जैसे एक कुत्ता हड्डी को लिया कहीं मिल गई और चिबाते हुए उसके कांटों जैसे हड्डियों से उसके मसूड़े में लग करके रक्त बहता है और कहता है जी क्या बहुत स्वादिष्ट नमकीन, और उसको देख करके दूसरे कुत्ते जितने हैं पास मोहल्ले के उसके पीछे लग जाते हैं, उसको काटने लगता है लगते हैं। अब जब तक उसको छोड़ नहीं देते, छोड़ देता हूं तब तक उसको काटते रहते हैं, और दुम दबा करके पीछे हट करके जब वो देखता है दूसरे ले लेते हैं फिर उनको काटते हैं। यही संसार की दशा है। इसलिए इसमें सुख और शांति नहीं है। साधु संत में के संग में हम लोग समझें कि जगत के मूल कारण कौन है, जीव कहां से आया। इसलिए शास्त्र में बतलाते हैं, हमारे गीता भागवत में बतलाते हैं, हम उसके पार्ट एंड पार्सल, हम उसके अंश हैं भगवान के, अंश नहीं विभिन्न अंश हैं। जैसे उसमें चेतनता है वैसे हम में भी है, जैसे उसका रूप है हम में भी रूप है, जैसे उसमें गुण है हम में, किंतु यह कण मात्र है और वो परावधि है, पूर्ण है, हम पूर्ण नहीं है। इसलिए माया हमें ढक लेती है और भगवान को माया नहीं ढकती, उनका आदेश पालन करती है। इसलिए बुद्धि माया अभी हमें ढक रखा है। और भी बतलाया प्रह्लाद महाराज जी ने, देखो यह जो हरा भरा संसार लगता है इसको छोड़ करके बुद्धिमान पुरुष साधु संग में, वन में माने साधु संग में जाकर भगवान का भजन करे, यही मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य है। उसने अपने पिताजी को बतलाया, जब पिताजी ने पूछा तुमने स्कूल में क्या समझा अच्छी तरह से, कौन सी विद्या, तब उन्होंने बतलाया हे राजन, हे असुर कुल के वज्र शिरोभूषण, आप जब पूछ रहे हैं तो मैं बतला रहा हूं, यह गृह अंधकूप है, इसको छोड़ करके बुद्धिमान पुरुष साधु संघ में जाकर के भजन करें। जिसमें बतलाया अंधकूप मने क्या, एक कुआं अंधा, अंधा कुआं, पानी नहीं है, सूख गया है, और नीचे में कुछ उसकी दीवालों में कुछ पीपल के बरगद के छोटे छोटे दरख्त पेड़ उगाए हैं, इसलिए कुआं जरा भरा हुआ मालूम पड़ता है, कितना गहरा है ऊपर से नहीं मालूम पड़ता, और भीतर में क्या है, सांप इत्यादि भरे पड़े हैं। एक व्यक्ति जा रहा था जंगल में मानो, और जाते जाते किसी बाघ ने उस पर आक्रमण किया, वो बचने के लिए भागा, बड़े बड़े पेड़ों पर चढ़ नहीं सका, अंत में देखा एक कुआं अंधा उसकी टहनियों को पकड़ करके नीचे कूद गया। नीचे देखता है विषधर सर्प गोखुसर कालेसर फौं-फौं कर रहे हैं, यदि नीचे गया तो सांपों ने काट लिया, ऊपर यदि आया तो बाघ खा लेगा। और कितनी देर तक टहनियों को पकड़ करके रखेगा, दोनों हाथों से दो टहनियों को पकड़ करके झूल गया, नीचे जाने पर सांप काटेगा इसलिए नीचे नहीं जा रहा, ऐसे प्रतीक्षा कर रहा है। और इतने में देखा कि कुएं से निकल करके दीवाल से दो चूहे काटने लगे, एक सफेद एक काला। अब वो आधा काट चुके हैं, अब आधा थोड़ा सा बाकी है, अब तो गिरना ही है। इतने में देखा जिस डाल को पकड़ करके झूल रहा है उसके ऊपर वाली डाल में कुछ मक्खियों ने मधुमक्खी छत्ता लगा रखा है और उसमें से बड़ा सुंदर सुनहला बूंद गिर रहा है, मधु का टपक रहा है। उसने अपना मुख उधर किया और एक बूंद मुख में आया, कहता है जी क्या मधु, क्या मधु। उसके टेस्ट में भूल गया। अब इसका तात्पर्य क्या है यह समझना है। मनुष्य अपने कर्मों के फल से यह कर्म रूपी वृक्ष के ऊपर लटका हुआ है, यह संसार अंधाकूप है और उस पर अपने कर्मों भले और बुरे दोनों कर्मों की डालियां हैं, ये पीपल और बरगद इत्यादि की डालियां, उसको पकड़ करके झूल रहा है। नीचे सर्प तरह तरह के जगत में प्रॉब्लम्स हैं, दुख है, भाई के साथ में लड़ाई, परिवार के साथ लड़ाई, देश देशांतर के साथ में लड़ाई, झगड़ा बिना कारण ही पड़ोस वाले टांग अड़ा करके आपको नीचे दिखलाने की चेष्टा करेंगे, रोग तरह तरह के, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको क्रोध नहीं, काम नहीं, लोभ नहीं, अपने शत्रु हमारा मन ही है शत्रु, हमारे कर्म हमारे शत्रु हैं। इस प्रकार से ये सर्प और ऊपर में मृत्यु रूपी बाघ, चारों तरफ में मृत्यु, बचने की संभावना नहीं। किसी प्रकार से ये कर्म रूपी दो, अच्छा कर्म या बुरा कर्म, दोनों की टहनी को पकड़े हुए हैं और ऊपर से मधुमक्खियों का छत्ता क्या है, गृह का सुख, सुंदर पत्नी मिली, जब काम पर से आए तो मधुर मधुर बोलियों से आपका चित्त हरण कर लिया, बच्चे को गोदी में बैठा दिया, वो भी पापा पापा करने लग गया, यह गृह का सुख। बंधु कितने दिन के लिए, जब तक कि वो डाल कट नहीं जाती, और डाल कटना वो आधा तो कूरे दी रहे हैं, यदि 50 वर्ष की आयु यदि हो तो आधा तो कट गया इसी में, अब आधा थोड़ा खसा किसी प्रकार से कभी भी वो कट सकता है। वो काट कौन कर रहे हैं, काला चूहा और सफेद चूहा। काला चूहा क्या है, रात, और सफेद चूहा दिन। हमारी आयु रूपी लंबे परगत के पेड़ को ये चूहे दोनों कुतर रहे हैं, एक दिन गया एक रात गई, फिर एक दिन आया दूसरी रात आई, 50 वर्ष कट गया और 50 वर्ष है, फिर उसमें भी कितना कट गया, मेरी उम्र तो 100 वर्ष की है, अरे 100 वर्ष तुम्हारी कट गई, कितना दिन जीवित रहेगा, मरना जरूर पड़ेगा, कोई भी बचा नहीं सकेगा, मरना वह संभावी है। ये मरना भी बड़ी एक सुंदर खेल है, मरना माने क्या, इस शरीर को छोड़ करके दूसरे नए वस्त्र को पहन लेना ही यही है जन्म, मृत्यु है इसको छोड़ देना। इस तथ्य को हम समझ नहीं पाते हैं और दिन रात दुखी रहते हैं। वृद्ध हो गए, सोचा जी अब मैं वृद्ध हो गया, हजम नहीं होता, रोग अत्यंत अधिक हो गए, हो गया कैंसर, कौन बचाएगा? बहुत दवा किया, लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च किए तो भी मरना। यदि किसी को यह कैंसर और टीबी न भी हो मरेगा कि नहीं? तो भी मरेगा। इसलिए मरना अवश्यंभावी है। इसको याद रख करके प्रहलाद महाराज जी करते हैं, देखो दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करता, कर्मनाभ की कर्मा आरंभ मानानंग दुख तय सुखाए, कर्म करने वाले हैं वे सोचते हैं दुख के लिए कोई कार्य नहीं करता, कार्य करते हैं सुख के लिए। किंतु ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको खूब अनुभव है, जिसकी उम्र 70-80-90 की हो गई है, उनसे पूछिए आप बड़े सुखी हैं ना, अभी तो हम बालक हैं, अभी तो सुख भोग नहीं सके, आपने तो अब सुख भोग लिया है, 100 वर्ष की आयु हो गई है, चल फिर नहीं सकते, देख नहीं सकते, बच्चे सब ताना मारते हैं, सुखी हैं? वो सुखी हो सकता है? सुखी नहीं है। तभी नहीं कहेगा, कहेगा जैसे मैं तो ये चाहता हूं कि हमारे नाती को की शादी हो जाए और उसके लड़के को गोदी में खिला लें, इसमें सुखी समझता है, मर रहा है, मरते मरते भी ऐसा ही समझेगा। हम इसकी अनुभूति करना चाहिए। तो जिस प्रकार से दुख के लिए हम कोई भी कार्य नहीं करते, सुख के लिए ही करते हैं, किंतु दुख क्यों आता है बिना बुलाए? एक आदमी सारा जीवन दुख के लिए कोई काम नहीं किया, बुढ़ापा क्यों आया? मरना नहीं चाहते, मरना क्यों आया? लड़ना झगड़ना नहीं चाहते, फिर भी आ गया क्यों? समस्या न आए किंतु फिर भी आशी आती है। कोई रोग नहीं चाहता, रोग आ जाता है। भाइयों इसमें भी एक विशेष कारण है, वो कारण ये है कि तुम सुख चाहो और न चाहो, पूर्व जन्म में या इस जन्म में सुख के लिए कारण किया होगा तो सुख भी आएगा, न तत् प्रयास हो कर्तव्य, इसके लिए सुख करने की खोजने के लिए उसके लिए प्रयत्न कर चेष्टा मत करो, बिना प्रयास किए आ जाएगा। यदि विश्वास न है तो देख लो, कोई सुख दुख नहीं चाहता फिर भी दुख आ जाता है, तो सुख भी यदि तुमने कुछ किया तो जरूर आ जाएगा। इसलिए बुद्धिमान पुरुष लोग अपना जीवन इसमें नष्ट नहीं करते हैं खाने पीने और सुख के लिए, वो तो आएगा ही, निश्चित आएगा, तुम नहीं चाहेगा तो भी वो आएगा, किसी न किसी प्रकार से सुख भी भोगा लेगा। इसलिए कहते हैं नत प्रयास तत्प्रयास हो कर्तव्य, जत आयु वह परम, उसके लिए सुख के लिए चेष्टा मत करो, सुख आएगा दुख भी आएगा। इसलिए दोनों को भाइयों को एक समान समझ करके भजन करो, उपलब्धि करो जो मैं कौन हूं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष भगवान को जानने के लिए, अपना कल्याण किस में होगा इसको जानने के लिए सदगुरु का पद आश्रय करते हैं। तस्मात गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु सेव उत्तम शब्दे परेच निष्णातम ब्रह्मन्युपसमास। तस्मात जब दुखों की अनुभूति हो, जे संसार ये दुखपूर्ण है और जेल खाना है, हमें एक दिन बूढ़ा होना है, एक दिन बूढ़ा होना है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो बेबी हो बच्चा हो, जरूर बूढ़ा। हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई कोई भी इसे अछूता नहीं, सबको। इसलिए बुद्धिमान पुरुष वह है कि कल्याण किस में हमारा होगा, इसको समझने के लिए ऐसे एक अनुभवी गुरु को प्राप्त करे। तस्मात गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु से उत्तमम शब्दे परेच निष्णातम, जो वेद शास्त्रों के विचारों में पारंगत हो, हमारे वैदिक संस्कृति के विचारों में वो पूर्ण रूप से पारंगत हो। दूसरी भगवान की कुछ अनुभूति हो, शास्त्रों को जानने से ही नहीं हो जाएगा। बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं, भागवत मुखस्थ है, गीता मुखस्थ है, किंतु एक अक्षर भी पालन नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। इसलिए पढ़ने लिखने से ही नहीं होगा, इसलिए गुरु भी अनुभवी होना चाहिए और संसार में कहीं भी आसक्ति न हो। संसार के किसी मोह माया जाल में आसक्त न हो, पूर्ण रूप से अनाशक्ति हो। एक ही जगह नहीं, शास्त्रों में, वेद में, उपनिषद में सर्वत्र ऐसा कहा गया। इसलिए हमें उचित यही है, ऐसे सद्गुरु प्राप्त करके भगवान का भजन करें। प्रहलाद महाराज ने और एक बतलाया, मान लिया कि तुम्हारी आयु 100 वर्ष की है, आधा तो सोने में चला गया, तो 50 वर्ष तो गया सोने में, और बचपन से लेकर 24, 25 ना तो 20 तो मान ही लो संसार में विद्या, धन उपार्जन करने की शिक्षा, किसी एक विषय में एक्सपर्ट होना, यह 20 वर्ष और चला गया, और अंतिम जीवन का 80 से 100 वर्ष जरठ विद्ध हो जाते हैं, गवर्नमेंट से उनको नौकरी से अलग कर दिया जाता है, यहां तक कि वो कुछ कर नहीं सकते, सीधे बैठ नहीं सकते, सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते। वो 20 वर्ष बेकार का गया, वो 20 और 20 40 और 50 90 वर्ष गया यूं, बाकी रह गया 10 वर्ष। 10 वर्ष में विवाह करना, शादी करना, विशेष करके आज के युग में टीवी और कंप्यूटर और तरह तरह की शिक्षाएं हैं, फिर विवाह करना है, फिर बच्चे को पैदा करना है, फिर उनको पालन पोषण करना है, समय कहां रहा? माया एक मिनट समय नहीं देगी। इसलिए प्यारे बंधुओं, गंगा जी सूख जाएंगे तब हम पार करेंगे, ये दुर्बुद्धि मत रखो, न गंगा कभी सूखेगी न पार होंगे। इसलिए जहां पर जिस रूप में हो, कौमार काल से ही भगवान का भजन आरंभ करो। 5 वर्ष की उम्र से, जब से ज्ञान हो तभी से भगवान का, नास्तिक मत बनो। भगवान हम नहीं मानते हैं, वेद शास्त्र नहीं मानते हैं, अपने बाप और मैया को नहीं मानते हैं, वो मृत्यु और दुख नहीं तुमको बचा सकेगा। एक आदमी ने गुरुजी से पूछा, हमारे भगवान को देखा आपने? भगवान है? भगवान कहाँ है? रहता तो हम लोग देख लेते। तो गुरुजी ने उससे पूछा सहज रूप में, तुम जिसको देखते हो उसी की बात मानते हो, यह बात ठीक है कि गलत? तो हम तो जिसको देखते हैं उसी की बात मानते हैं, देख सुन करके। तो उन्होंने कहा जी अच्छा ये बतलाओ कि तुम्हारे ये जो बाप हैं उनसे तू पैदा हुआ, इसको देखा? समझने की चेष्टा करें, जिस समय माता पिता की शादी हुई और पहले बार उनका मिलन हुआ तो तुमने देखा, जिस तरह तुम उसी से ही पैदा है, फिर बगल झांकने लग गए, तो तुम किसी की बात मान, तुमने इनको कैसे समझा जी ये तुम्हारे पिता है? तो मैया ने कहा, तो मैया की बात को मानता है ना, तो मैया की बात को मानता है, यही है शास्त्र। अनुभव महापुरुष लोग हैं पिता के रूप में, इनकी बातों को मान। आजकल कुछ ऐसा नजारा हो गया है, मैक्स मिलर की लिखी पुस्तकें, वर्ड्सवर्थ की पुस्तकें, मिल्टन की लिखी हुई पुस्तकों को हम उसमें विश्वास रखते हैं, किंतु हमारे व्यास जी जैसे सर्वज्ञ भगवान के अवतार, उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता, वो प्रमाणिक नहीं है, वो तो डेड लैंग्वेज है। इसलिए हमारे सर्वनाश का कारण, संस्कृति का विनाश का कारण ये हुआ। पश्चात देश वाले जो जूठा रख देते हैं उसको पाने में हमें बहुत आनंद होता है, किंतु हमारे ऋषि महर्षि ने अपने अमृतमयी वाणी को छोड़ा है, सर्वे सुखिना भवन्तु सर्वे निरामया संतु। ये सब बातें नहीं मानते हैं, इसलिए हमारी ये दुर्दशा है। तो आज यहीं पर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं, ये मुख बंद समझिए। फिर प्रोग्राम होगा कल परसों जहां, और हम लोग यदि रहेंगे यहां पर 5-6 दिन और आप लोग श्रवण करेंगे। हम ही लोग अधिक हैं, जनता यहाँ की लोग कम हैं, तभी इन लोगों के लिए हिंदी में मैंने कहा। इन इंग्लिश आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स एंड परहैप्स यू अंडरस्टैंड इट, व्हेदर यू वांट आर नॉट, सफरिंग विल कम, तो दे विल एक्सप्लेन, माय डॉक्टर इज टेलिंग दैट यू शुड नॉट स्पीक नाउ। तो कीर्तन कर दो, शाम के समय में हमने सोचा जैसे वहां पर तो जाएंगे नहीं और न जाना होगा न क्या होगा मेरी समझ में नहीं, तो हमने उनको कह दिया कि राम निवास कहाँ,
शास्त्री नगर,
शास्त्री नगर में एक आदर्श,
आदर्श नगर,
आदर्श नगर में वहां पर एक मंदिर में बहुत मंदिर हम अनुरोध कर रहे थे। हम हमने कहा अच्छा तो हम 10 मिनट
राम मंदिर,
तो यदि वहाँ होगी यदि वो लोग आए तब तो जाऊंगा। अभी आकर के आए और आकर के